बदल रहा है, युग ने ली अंगड़ाई,
जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई,
वंदे मातरम करे जगत,
श्रद्धा भाव समर्पण।
माफ करें, दृष्टि परिवर्तन नारी को नहीं नारित्व को दे, एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। मैं हूं इस शो के सूत्रधार अमन यतन वर्मा, और नारी की आत्मिक खूबसूरती से हमारी पहचान करवाएंगी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड फैमिली फिजिशियन ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर अल्पा जी, जो पिछले 40 सालों से अध्यात्म के वास्तविक रूप को पहचान और अपनाकर इसे समाज के कल्याण के लिए प्रयोग कर रही है। इन्होंने लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें योग और ध्यान भी शामिल है। कई लोगों ने इसे अपनाया और अपने जीवन को भी आनंदमय बनाया है, इसके लिए हम दिल से डॉक्टर अल्पा जी के आभारी हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अरे तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए अपनी बातें हमें बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नारी के सौंदर्य के इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नारी के सौंदर्य पर हमारी ये रिपोर्ट।
खूबसूरत दिखने की चाहत तो हर किसी महिला में होती है, जिसके लिए आए दिन वो कोई न कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है। जैसे धोती पहनने वाले मर्द आज शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, वैसे ही औरतें भी जीन्स टॉप में घूम रही हैं। करे भी क्यों ना, वो 21वीं सदी की नारी जो है, अपने घर और ऑफिस और दोस्तों के बीच उसे स्मार्ट शो दिखना होता है। आज के जमाने में किसी भी नारी के गुणों को इस बात से आंका जाता है कि वो कितनी प्रेजेंटेबल दिखती है। महिलाएं खूबसूरती की इस दौड़ में बिना कुछ सोचे समझे शामिल हो जाती हैं, मगर वो भूल जाती हैं कि नारी का सौंदर्य उसकी शारीरिक खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक खूबसूरती पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि आप अपने चेहरे का ध्यान न रखें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने भीतर की नारीत्व को पहचानें, अपने गुणों की खूबसूरती को निखारें, तभी आप सही मायने में खूबसूरत होंगी।
तो ये थी हमारी रिपोर्ट नारी की बाहरी खूबसूरती और भीतर की खूबसूरती के बारे में। डॉक्टर अल्पा जी, क्या होती है नारी की आत्मिक खूबसूरती, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय के बारे में?
पहले तो हम सौंदर्य शब्द का अर्थ समझे कि वास्तव में सुंदर शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर से उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हम परमात्मा के लिए भी कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहाँ सुंदर शब्द अर्थात पवित्र, पावन या प्योर। फिर प्रकृति का कोई अच्छा दृश्य होता है, उसके लिए हम कहते हैं कि बहुत सुंदर दृश्य है। तो यहाँ सुंदर शब्द से तात्पर्य है कि प्रफुल्लित करने वाला या प्रसन्न करने वाला। और किसी व्यक्ति के लिए जब हम कहते हैं कि सुंदर है, तो यहाँ अर्थ है कि आकर्षक है। जहाँ तक नारी के सौंदर्य की बात है, तो पूरे व्यक्तित्व की ओर ध्यान देना जरूरी है। तो परिभाषा अगर देखें तो बाह्य सौंदर्य अर्थात त्वचा का स्वस्थ होना, स्वच्छ होना और पूरे शरीर का फिट होना, और आंतरिक सौंदर्य अर्थात हमारा व्यवहार अच्छा होना, हमारे संस्कार में सभ्यता हो, हमारे स्वभाव में सरलता हो, हमारी विचारधारा श्रेष्ठ हो, सकारात्मक विचार हो, आपस में एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावना हो। हर नारी को ये समझ लेना चाहिए कि जितना जितना अपने आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाते जाएंगे, अपने अंदर छिपे हुए गुणों को उभारते जाएंगे, उतना हमारे पूरे समाज का पुरुष वर्ग भी सम्मान प्रदान करेगा।
वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डॉक्टर अल्पा जी आपने हमें सही रूप में सौंदर्य का अर्थ समझाया। अब हम एक वैज्ञानिक रूप में भी आगे देखें, बहुत जल्द हमारे एक खास मेहमान के द्वारा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पर मेरे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुतों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
अगला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो।
मुझे शक्ति दो,
कमजोर बताना बंद करो, ये भूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया, हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देने एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। अब हम जानेंगे कि कैसे नारी अपनी आत्मिक और शारीरिक सौंदर्य को और अधिक निखार सकती है। तो इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड से नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में मास्टर्स डिग्री से सुशोभित, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी, डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन और आरोग्य मंदिर द्वारा कई सम्मान से नवाजी गई डॉक्टर शालू गुप्ता जी। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है इसलिए वापस आपको बुलाया यहाँ पे हमने। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर अल्पा जी ने हमें बताया कि आत्मिक सौंदर्य कितना महत्वपूर्ण है नारी के लिए, वैसे ही आपके अनुसार शारीरिक सौंदर्य के क्या महत्व होते हैं नारी के जीवन में?
नारी की आंतरिक सौंदर्यता ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाहरी सौंदर्यता तब आती है जब नारी का तन और मन दोनों ही सुंदर हो। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है कि नारी की मनुष्य अपने रहन सहन को, वाणी को, अपने खान पान को प्रकृति के अनुकूल रखे। यदि हम अंदर से स्वस्थ हैं तो चेहरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्लो स्वयं ही आ जाएगा। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिससे हमें जीवन जीने की कला भी आती है और जो हमें अंदरूनी स्वस्थ भी रखती है।
बहुत खूब। आइए हम कुछ महिलाओं की परेशानियों को सुने जिन्हें बाहरी सौंदर्य की कमी से कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की लड़की हूँ, मैं हमेशा से क्लास में टॉपर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिया है। कुछ उसे तो मैं मिली भी हूँ, पर मेरे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुतों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से मेरा आत्मविश्वास भी खोने लगा है और अब मुझे लगता है कि लोगों को खूबियों से नहीं रंग रूप से प्यार है।
मैं सरोज विवाकर बोल रही हूँ। मैं कई सालों से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती हूँ। अभी मुझे जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो लोग 18 से 30 साल की लड़कियों को ही जॉब देते हैं। 40 साल से ऊपर की महिलाओं को वो लोग प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि उसे प्रेजेंटेबल नहीं लगता।
मेरा नाम तृप्ति मयूर गांधी है, मैंने MBA इन HR किया है। कुछ एलर्जी के वजह से मेरे चेहरे पे थोड़े दाग आ गए हैं, इसलिए मुझे कोई भी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा है। मैं मेरे काम के बारे में बहुत मेहनती हूँ, बट कंपनीज को अच्छे दिखने वाले खूबसूरत लोग ही चाहिए।
मैं एक गृहिणी हूँ, मेरे पति बैंक मैनेजर है, अक्सर पार्टियों में जाया करते हैं मगर मुझे नहीं ले जाते क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के अनुसार मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती हूँ।
खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग, अच्छे लुक, क्या वाकई अल्पा जी ये सब इतने महत्वपूर्ण है कि आप किसी की हजार खूबियों को इनमें से किसी भी एक वजह से नकार सकते हैं? क्या विचार है आपका इसके बारे में?
त्वचा को जो रंग मिला हुआ है वो तो जीन्स के कारण मिला हुआ है।
आपको फैमिली बैकग्राउंड
तो जीन्स को बदलने के लिए तो हम चलो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन त्वचा में ग्लो बने रहना, त्वचा में लालिमा बने रहना, त्वचा में ताजगी बने रहना, इसके लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं। आयुर्वेद के आधार से अगर हम देखें तो त्वचा में ग्लो का होना वो रस धातु अर्थात प्लाज्मा फ्लूइड और लिम्फेटिक फ्लूइड के स्वस्थ होने पर है। और त्वचा में लालिमा बने रहना या ताजगी बने रहना वो रक्त धातु अर्थात ब्लड के स्वस्थ बने रहने पर है। हमारे आहार में जितना हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ऐसे पदार्थ हम ज्यादा लेंगे तो हमारी त्वचा चमकदार, ग्लो से पूर्ण बन सकती है। साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि हमारे हर विचार का प्रभाव भी त्वचा के ऊपर पड़ता है। जैसे स्नेहयुक्त विचारों का प्रभाव रक्त धातु के ऊपर पड़ता है, शुद्ध पवित्र विचारों का प्रभाव रस धातु के ऊपर पड़ता है और आनंद युक्त विचारों का प्रभाव ओज धातु के ऊपर पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर आपका मूल्यांकन आपके बाहरी सौंदर्य के आधार पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को महत्व ना दे, लेकिन ये विश्वास रखे कि आपका आंतरिक सौंदर्य ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा।
अब आप बताइए डॉक्टर सालू जी कि आपका इस बारे में क्या विचार है?
जी, मैं दीदी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बाकी बात ये है कि हमें दूसरों की बात सुनकर आत्मग्लानी नहीं होनी चाहिए। इंसान की सूरत नहीं सिरत देखी जाती,
लेकिन ये कहना बहुत आसान है। क्या होता है कि मे भी शायद एक्सपीरियंस के बाद ये बात समझ में आती है। अब कम उम्र की लड़कियां जो 16, 17, 18, 19 एक वो उम्र होती है जहां आप प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं, तो वो क्या करें?
हाँ, हमें प्रेजेंटेबल जरूर होना चाहिए। जो आपकी बात है इसमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए हम अपने विचारों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। वो जैसे चाहे बटन दबाएं, हमारा मूड वैसे ही चेंज हो जाता है। देखिए, हमें अंदरूनी आंतरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। इसमें सर्वोपरि हमारा भोजन है जो हमें जीवन तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे लिए औषधि का काम भी करता है। हमारे भोजन का 80% भाग अल्कलाइन यानी क्षारीय होना चाहिए, जिसमें कच्चे मेवे, कच्चा सलाद, मौसम के फल, जूस, फल और सब्जियां आते हैं
जी।
और 20% भाग एसिडिक यानी अम्लीय होना चाहिए जो कि पका हुआ भोजन है, लेकिन हम इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। हमारे भोजन का 90% भाग पका हुआ और 10% भाग कहीं क्षारीय है। सारे रोगों की जड़ यही है। यदि पशु का पेट भरा है और हम उसके आगे भोजन रख दें तो वो मुंह फेर लेता है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि हमारा मन ना भी हो हम बेमन के भी खाए जाते हैं। हम कभी भी बिना खाए बिना नहीं रुकते, हम खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते।
आप चाहे कितना भी रूप के धनी क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर नारित्व गुणों को नहीं निखारेंगे, आप नारी के अस्तित्व के सही मायने से कोसों दूर ही खुद को पाएंगे। क्या है नारी के सौंदर्य का सही रूप, चलिए आपको मिलवाते हैं।
कौन जीता है इस दुनिया में दूसरों के लिए भला? इंसान की अपनी जरूरतें तो पूरी नहीं होती, भला औरों के लिए सोचने की फुर्सत किसे? लेकिन एक नारी ही ऐसा रूप है जो कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि औरों की खुशियों के लिए जीती है, और ऐसी ही एक नारी और माँ है मदर टेरेसा। केवल 12 साल की उम्र में उनको ये बोध हो गया था कि उनका जन्म केवल मजबूर और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हुआ है। फिर क्या था, बस उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, रोगियों और बच्चों को समर्पित कर दिया। हमारे समाज से ठुकराए लोगों के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगाया और कहा कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ। इतनी खूबसूरत और आत्मिक सौंदर्य की धनी थी मदर टेरेसा।
नारी के आत्मिक सौंदर्य का सच्चा रूप मदर टेरेसा। अब तो सारे भ्रम और शंकाओं से पर्दा उठ ही गया होगा। किसी भी नारी का वास्तविक सौंदर्य होता क्या है? किसी पर अपने प्रेम की बारिश करना, भूखे को खाना खिलाना, बड़ों का आदर और समाज का कल्याण, केवल नारी ही इन सभी कामों को संभव कर सकती है। डॉक्टर अल्पा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे नारी अपने आत्मिक सौंदर्य को पहचाने और उसे निखारे, कैसे करे?
जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारे हर विचार का प्रभाव शरीर के एक एक सेल्स के ऊपर अर्थात कोशों के ऊपर पड़ता है। 150 ट्रिलियन सेल्स शरीर में हैं, उन सबके ऊपर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे विचार सबसे पहले तो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, दूसरा प्योर हो अर्थात शुद्ध हो, हर विचार के पीछे हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो वृत्ति है, वो सही हो, सकारात्मक हो, उसे कहते हैं कि शुद्ध विचार हो। तीसरा, हमारे विचार जो है वो हेतुपूर्वक हो, पर्पसफुल हो, और चौथा पावरफुल हो, दृढ़ता संपन्न विचार हो। तो जब हमारे विचार प्योर, पॉजिटिव, पर्पसफुल और पावरफुल बनते जाएंगे, और जो आज सब कहते हैं कि हम प्रेजेंटेबल बनना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेबल तो बनेंगे, लेकिन साथ साथ हमेशा के लिए एक्सेप्टेबल भी बन जाएंगे।
प्रेजेंटेबल तो बनेंगे, लेकिन साथ में एक्सेप्टेबल भी बन जाएंगे। डॉक्टर शालू जी, आप क्या बताना चाहेंगी, कैसे बेहतर बनाए नारी अपने सौंदर्य को?
देखिए, नारी को अपने सौंदर्य को बनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रसोई घर एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ उपलब्ध है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, टमाटर का पैक। टमाटर जो है उसमें लाइकोपीन होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारी त्वचा को हल्का रखता है। एक छोटे से टमाटर का पैक बनाएं, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाएं और उसे चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट बाद उसे धोएं तो चेहरे पर बहुत निखार आ जाता है। इसी तरह मुल्तानी मिट्टी, इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं। ये हमारे शरीर से गंदगी को खींचते हैं। यदि हम मुल्तानी मिट्टी में आधा चम्मच दूध या दही मिलाएं और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं, तो हमारे चेहरे पर बहुत निखार आएगा। ये सभी फेस वॉश और जो कॉस्मेटिक क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इन सबसे कहीं बेहतर हैं।
सबसे कहीं बेहतर।
इसके अलावा सब्जियां बहुत ही अधिक लाभकारी हैं, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर। आप ऐसी कुछ सब्जियों को उबालें, उसका पेस्ट बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। आपकी त्वचा बिल्कुल फर्म हो जाएगी। इसके अलावा मिट्टी का लेप करें, भाप स्नान लें, इससे अधिक लाभकारी कुछ नहीं है।
ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितने मर्द लोग हैं घर में, उन्हें शायद खाने को थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उनकी औरतें सुंदर दिखना शुरू हो जाएंगी। नारी के वास्तविक सौंदर्य से होंगे हम रूबरू, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
तो अपना मूल्यांकन हम भगवान की नजरों से करें, अपनी नजरों से करें, औरों की नजरों से ना करें, तो स्वयं ही पूरे समाज की विचारधारा बदल जाएगी।
ब्रह्मा कुमारी से प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
का दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपने बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको देवी के रूप में।
आप भी देखिए
नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को लेकर एक वैचारिक क्रांति।
दृष्टि परिवर्तन,
नारी को नहीं नारीत्व को देगी एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। जिस नारी में गुण होते हैं वही सही मायनों में रूपवान होती है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आंतरिक सौंदर्य को कैसे निखारें। डॉक्टर अल्का जी, जब भी हम कोई धार्मिक धारावाहिक देखते हैं तो हमेशा जो बुरी शक्तियां या जैसे राक्षसी रूप कहते हैं वो कुरूप होती है, क्या इसका संबंध भी आपके आत्मिक गुणों या आत्मिक सौंदर्य से है?
हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या हम उनके चेहरे की पूजा करते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी की पूजा करते हैं? नहीं। लेकिन जो देवी देवताओं में दैवी गुण है उसी के कारण उनका जीवन भी बहुत सुख शांति और समृद्धि से संपन्न बताया है। तो ये हमें समझ लेना जरूरी है कि जब मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। बेशक अपनी त्वचा का ध्यान जरूर रखें, लेकिन ये ना भूले कि लोग आपको, अधिकतर लोग जो आपको स्नेह करते हैं वो आप में छुपी हुई खूबियों के कारण करते हैं, ना कि आपके बाह्य सौंदर्य के कारण करते हैं।
वाह, बहुत ही सरल और उत्तम उदाहरण देकर सही बात कही आपने कि व्यवहार में सुंदरता लाओ न कि चेहरे पर। आज हमारे बीच भी कुछ महिलाएं बैठी हैं जो कि आत्मिक सुंदरता की धनी हैं। चलिए उनसे उनके जीवन के अनुभवों को सुनते हैं।
आई वर्क इन ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। मुझे हर वक्त प्रेजेंटेबल रहना बहुत जरूरी है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है जब भी मैं टेंशन में रहती हूँ या कोई हैवी वर्क रहता है तो मेरे फेस डल हो जाना ऐसे दिखता है। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं खुद खुश रहूं और दूसरों को खुश करूं, इसके वजह से मैं अच्छी भी दिखने लगूंगी और दूसरों का दिन भी अच्छा बनाऊंगी। तो इसी मुझे खुश मिजाज के चेहरे से सब लोग पसंद करते हैं।
तो आपको लगता है कि आप अंदर से खुश हैं और लोगों को खुश रख रहे हैं?
हाँ बिल्कुल।
चलिए आपकी बात मान लेते हैं।
मैं कहना चाहूंगी कि मैं जब कॉलेज में जाती थी तो मेरी क्लास में मेरे दोस्त बहुत कम था, क्योंकि मैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करती थी
जी।
लेकिन वहीं मेरे डिपार्टमेंट में मैंने टॉप किया था।
अच्छा, ओके।
उसके बाद सभी मेरे पास आती थी नोट्स के लिए।
अच्छा अच्छा।
तो उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मुझे अपने उसूलों से कभी डगमगाना नहीं, ठीक रहना है
जी। तो वो सारी की सारी लड़कियां आपके टॉप होने के बाद आपके पास नोट्स के लिए आती?
नोट्स के लिए आती।
अच्छा, कोई लड़का आया कि नहीं?
हाँ, वो भी आए थे।
वो भी आए। चलिए फिर मामला बिल्कुल सही है। डॉक्टर अल्पा जी और डॉक्टर शालू जी, आप दोनों की ओर से हमारी उन बहनों के लिए क्या संदेश है जो समाज द्वारा बनाए गए सौंदर्य की जो परिभाषा है उसके कारण आत्मग्लानी में रहती है?
बाह्य सौंदर्य के लिए हम क्या क्या करते हैं? एक तो नाखून को अच्छा रखते हैं, बालों को अच्छा रखते हैं, त्वचा को अच्छा रखते हैं। साथ साथ आंतरिक सौंदर्य में भी हमारे विचार, हमारी वृत्तियाँ, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार हम श्रेष्ठ बनाते जाए तो दुनिया की कोई शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। वैसे भी हम देखते हैं कि एक आदर्श नारी का लुक ही बहुत गरिमापूर्ण होता है, डिग्निफाइड दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर छिपे हुए गुण उसमें निखरते हैं, जैसे समर्पणमयता है, प्रसन्नता है, मधुरता है, दया भाव है। ये एक आदर्श नारी के व्यक्तित्व में ही झलकते हैं। तो इसलिए मैं लोगों से भी कहना चाहूंगी कि क्या आप ऐसी माँ चाहेंगे कि जो अपने परिवार से ज्यादा, अपने बच्चे से भी ज्यादा अपनी त्वचा की संभाल करे? कोई ऐसी माँ नहीं चाहेगा। और इसीलिए परमात्मा ने भी विश्व कल्याण के कार्यों की शुरुआत नारी के नेतृत्व में किया है
जी।
तो अपना मूल्यांकन हम भगवान की नजरों से करें, अपनी नजरों से करें, औरों की नजरों से ना करें, तो स्वयं ही पूरे समाज की विचारधारा बदल जाएगी।
अपना मूल्यांकन आप भगवान की नजरों से करें और अपनी नजरों से करें, बहुत कमाल की बात है। शालू जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ और ये विचार बिल्कुल सही है कि नारी को अंदरूनी मन से स्वस्थ होना चाहिए। नारी के गुण जैसे कि सहनशीलता, दया भावना, प्यार, ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पंच महाभूतों से बनी है जिससे हमारा शरीर बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। हमें अपने जीवन को प्रकृति पद्धति बनाना है, प्रकृति के अनुकूल चलना है। हमें कुदरत ने बहुत से फल दिए हैं, बहुत से मेवे दिए हैं जो मौसम के अनुसार बदलते हैं। हमें मौसम के अनुसार ही भोजन को करना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान की पहचान है पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा। हमें इस बात को
पैर गर्म, पेट नरम
और सिर ठंडा,
और सिर ठंडा याद रखिएगा,
इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए।
हमारी संस्कृति में नारी को पूजनीय माना जाता है। हर रूप में वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है और इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाने का कारण उनका रूप नहीं, उनके गुण होते हैं। आप केवल अपनी नारित्व की शक्तियों का सम्मान करें तो दुनिया आपका सम्मान अवश्य करेगी। हलवा जी एंड शालू जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शो पर आए। हमारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने विचार हमारे सामने प्रकट किए। क्या है आपके विचार हमारे इस कार्यक्रम के बारे में और हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी जो यहाँ पे दी गई है उनके बारे में आप क्या हमें बताना चाहते हैं, जरूर बताएं। हमारा पता और हमारा ईमेल आईडी ये रहा। और मिलेंगे आपसे फिर हमारे अगले एपिसोड में और जानेंगे कि नारी कैसे है संस्कृति की संरक्षिका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नारित्व दर्शन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम शांति, वंदे मातरम।
संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है।
ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड, हमारे साथ बने रहिएगा।
संस्कृति इनहेरिटेंस है लिसनिंग टू द कॉन्शियस, अपनी आत्मा को सुनना, ये आपकी इनहेरिटेंस।
शरीर वो ढकने की चीज है और चरित्र है जिनको वो दिखाने की चीज है।
आप करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देने एक वैचारिक क्रांति।